आज है 23 नवंबर दिन शनिवार। सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। BHU में संस्कृत के असिस्टेंट प्रोफेसर फिरोज खान को मिला RSS का समर्थन।
लैंग्वेज पढ़ने के लिए हर कोई फ्री होता है, पढ़ाने के लिए भी फ्री होना चाहिए।
धर्म के आधार पर किसी को हम योग्यता से हटा नहीं सकते हैं।
यहाँ ये शो कर रहे हैं कि इंडिया का युद्ध कहाँ जा रहा है।
मॉब लिंचिंग के शिकार लोगों के परिजनों को है न्याय का इंतजार।
बोतल में पेशाब किया और लाके दे रहा तो क्या करेंगे, पी रहे हैं जो पिए जो उसे बोतल में भर दिया उन लोग पेशाब करके।
गौहत्या का केस उन पे दर्ज किया। जो पीड़ित हैं ये तो और भी विक्टिमाइज हो रहे हैं मार खाने के बाद भी।
और विवेचना में करेंगे याद भारतीय पर्वतारोहियों की शानदार उपलब्धि को सब विस्तार से, लेकिन पहले विश्व समाचार।
BBC समाचार सिंधु वासिनी से सुनिए। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में उन पर यूक्रेन मामले में महाभियोग चलाने के समर्थन में वोट किया गया तो वो चाहेंगे कि सीनेट में बाकायदा मुकदमा भी चले। अमरीकी समाचार चैनल फॉक्स न्यूज टेलीविजन को दिए तकरीबन एक घंटे लंबे इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि इस हफ्ते हुई सार्वजनिक सुनवाई में उन्होंने जो कुछ सुना उससे उन्हें बहुत गुस्सा आया।
Frankly, I want a trial. You know, I could think I could have it.
You want a trial?
Whatever I want.
कहूँ तो मैं चाहता हूँ कि मुकदमा चले। मुझे लगता है कि ये हो सकता है। पहली बात तो ये कि कभी महाभियोग चलना ही नहीं चाहिए। ये महाभियोग है ही नहीं। मैंने कल ही आपके चैनल पर देखा था। मैंने देखा कि 5 लोग कह रहे थे कि महाभियोग जैसा कोई मामला ही नहीं है। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। ट्रंप ने कहा कि वो चाहते हैं कि वो अज्ञात विसल ब्लोअर भी अपना बयान दर्ज कराए जिसने यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ उनकी बातचीत पर शक जताया था। ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब उनके खिलाफ महाभियोग से जुड़ी सार्वजनिक सुनवाई का पहला हफ्ता पूरा हो चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी जो बाइडेन और उनके बेटे के खिलाफ जाँच शुरू करने के लिए यूक्रेन पर दबाव बनाया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सीरिया में अनाथ हुए ब्रितानी बच्चों के स्वदेश लौटने का स्वागत किया है। ब्रितानी मूल के कुछ बच्चों को सीरिया में इस्लामिक स्टेट के कब्जे वाले इलाकों से वापस ब्रिटेन ले आया गया है। जॉनसन ने कहा कि इन बच्चों को वापस लाया जाना एक बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि जहाँ सरकार मदद कर सकती है उसे मदद जरूर करनी चाहिए।
The situation in Syria is very difficult and very dangerous.
सीरिया में हालात बेहद मुश्किल और खतरनाक हैं। मुझे लगता है कि इन अनाथ बच्चों को वापस लाया जाना एक बड़ी सफलता है। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि अगर हम कहें कि हम हर बार ऐसा कर सकते हैं तो ये कुछ ज्यादा ही आशावादी रवैया होगा। सेना के अलावा बाकी दूसरी कई मुश्किलें हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसा मैंने कहा है कि सरकार जहां तक मदद कर सकती है उसे करना चाहिए। ये थे ब्रितानी प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। बताया जा रहा है कि सीरिया में फंसे 12 ब्रितानी बच्चों को सफलतापूर्वक वापस लाया जा चुका है। ईरान में न्यायपालिका के एक प्रवक्ता ने कहा है कि हाल ही में ईंधन की कीमतों में हुए विरोध प्रदर्शन आयोजित करने वाले 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रवक्ता ने कहा कि ईरानी सेना रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शनों की अगुवाई करने वालों की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार किया है। ईरान में सरकार ने पिछले 5 दिनों से इंटरनेट सेवा बंद कर दी है ताकि प्रदर्शनकारी अपनी वीडियो ऑनलाइन पोस्ट न कर सकें और बाकी दुनिया को ये पता न चल सके कि देश में क्या हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन प्रदर्शनों में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन कुछ सूत्रों का कहना है कि मृतकों की वास्तविक संख्या का आंकड़ा और ज्यादा हो सकता है। केरल के एक क्लासरूम में 10 साल की एक बच्ची की सांप के डसने से मौत हो गई। इसके बाद से वहां सैकड़ों बच्चे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बच्ची के साथियों का कहना है कि सांप क्लासरूम की छत की एक सुराख में घुसा हुआ था। एक अनुमान के मुताबिक सांप के काटने से भारत में हर साल 50,000 लोगों की मौत हो जाती है। BBC समाचार।
ये BBC हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी। संदीप सोनी के साथ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से संबद्ध संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करने वाले संगठन संस्कृत भारती ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू में संस्कृत के असिस्टेंट प्रोफेसर फिरोज खान का समर्थन किया है। संस्कृत भारती ने फिरोज खान का विरोध कर रहे छात्रों से आंदोलन खत्म करने और फिरोज खान से निर्भय होकर विश्वविद्यालय में अपना योगदान देने का आग्रह किया है। वाराणसी से बीबीसी संवाददाता रजनीश कुमार की रिपोर्ट सुनिए मानसी दास से।
हिंदू शास्त्र और संस्कृत साहित्य की पढ़ाई के केंद्र के रूप में एक हिंदू विश्वविद्यालय की कल्पना 1904 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। आखिर 1915 में बनारस विश्वविद्यालय यानी बीएचयू बिल को स्वीकृति मिली। 1920 में मदन मोहन मालवीय ने एक हिंदू प्रोफेसर मौलवी महेश प्रसाद को बनारस बुलाकर उन्हें उर्दू फारसी और अरबी विभाग की जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन इस बात का अंदाजा तब शायद नहीं रहा होगा कि कभी धर्म और शिक्षा को लेकर ये विश्वविद्यालय चर्चा में आ जाएगा। बीते 15 दिनों से कुछ छात्र फिरोज खान नाम के एक प्रोफेसर के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में संस्कृत पढ़ाने के लिए हुई नियुक्ति के विरोध में धरने पर बैठे हैं। विरोध कर रहे छात्रों का कहना है,
संस्कृत एक ऐसी शिक्षा है बिना संस्कृति के आप उसको नहीं समझ सकते। बिना जने उदाहरण के आप संस्कृत खोलेंगे,
वहाँ जा करके पूजा जो उनको प्रणाम करके परिक्रमा किया जाता है, यज्ञ पवित्र धारण करके ही मंत्र पढ़ाया जाता है, उसका विधि है, उसका नियम फॉलो करना पड़ता है।
जहाँ कुछ छात्र धरना प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं, वहीं यहाँ पढ़ने वाली कई छात्राओं का मानना है कि ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं कि इस कारण पढ़ाई प्रभावित हो और विवाद शुरू हो जाए। अर्थशास्त्र में मास्टर कर रही छात्रा अदिति कहती हैं,
लैंग्वेज पढ़ने के लिए हर कोई फ्री होता है, पढ़ाने के लिए भी फ्री होना चाहिए।
वहीं कॉमर्स की पढ़ाई कर रही रश्मि सिंह कहती हैं कि धर्म के आधार पर किसी की योग्यता को खारिज करना ठीक नहीं।
धर्म के आधार पर किसी को हम उसके मतलब योग्यता से हटा नहीं सकते हैं। अगर उनको नियुक्त किया गया है तो उनकी एबिलिटी के आधार पर किया गया है, तो जो ये लोग धरना प्रदर्शन उसके विरोध में कर रहे हैं तो ये गलत है, नहीं होना चाहिए।
विश्वविद्यालय में कॉमर्स में मास्टर्स कर रही स्वाति पूछती हैं कि पढ़ाई का धर्म से क्या नाता।
मैंने ग्रेजुएशन में मैंने लैंग्वेज उर्दू लिया था। मुझे प्रोफेसर मना कर सकते थे कि नहीं तुम हिंदू हो, हम तुम्हें उर्दू नहीं पढ़ाएंगे, बट स्टिल उन्होंने पढ़ाया। अभी यहाँ ये शो कर रहा है कि इंडिया का यूथ कहाँ जा रहा है, वो इतना ज्यादा रिलीजन पर बात कैसे कर रहा है जब उन्हें एजुकेशन से मतलब होना चाहिए।
एक और छात्रा कहती हैं कि लोगों को ये समझने की जरूरत है कि धरना प्रदर्शन में बीएचयू के सभी छात्र शामिल नहीं हैं।
नहीं बिल्कुल नहीं सर, सबका एक जैसा ओपिनियन नहीं होता है ना।
इस मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कल एक बयान जारी कर डॉक्टर फिरोज खान के विरोध को गलत ठहराया है और कहा है कि ये विरोध सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला है। इधर बीएचयू प्रशासन ने एक बयान जारी कर कहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर फिरोज खान की नियुक्ति पूरी तरह से वैध है और इस मामले में विश्वविद्यालय के किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। बीएचयू के कुलपति राकेश भटनागर ने कल छात्रों से मुलाकात की और आश्वासन दिया कि नियुक्ति को लेकर छात्रों के जो सवाल हैं उनके जवाब 10 दिनों के भीतर दिए जाएंगे। इसके बाद देर शाम छात्रों ने धरना प्रदर्शन तो खत्म कर दिया, लेकिन कहा कि फिलहाल वो कक्षाओं में नहीं जाएंगे। छात्रों का कहना है कि धरना खत्म, लेकिन विरोध जारी रहेगा।
रिपोर्ट सुना रही थी मानसी दास। बीते 5 वर्षों में भारत के कई राज्यों में मॉब लिंचिंग यानी भीड़ के हाथों हिंसा की कई घटनाएं हुई हैं। राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड ने मॉब लिंचिंग के मामले में खूब सुर्खियां बटोरी हैं, मगर उन्मादी भीड़ के हाथों मरने वालों की सबसे ज्यादा संख्या झारखंड में दर्ज की गई है। मृतकों के परिजनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मॉब लिंचिंग के शिकार हुए लोग न्याय के लिए तरस रहे हैं। झारखंड से बीबीसी संवाददाता सलमान रावी की रिपोर्ट।
पिछले 5 सालों में सिर्फ झारखंड में ही मॉब लिंचिंग की 11 घटनाएं हुई हैं, जिसमें 19 लोग मारे गए हैं। इन वारदातों के पीड़ित परिवार अपनी वेदना सुनाए भी तो किसको। इन्हीं में से एक हैं जेरेमिना लकड़ा, जिनके पति प्रकाश लकड़ा को उन्मादी भीड़ ने मार डाला। जेरेमिना लकड़ा कह रही थी कि उनके पति की मौत को पुलिस ने छुपाया और पोस्टमार्टम के बाद ही उन्हें ये बात बताई गई। वो ये भी कह रही थी कि पुलिस ने उनके पति के शव को दफनाने के लिए भी दबाव डाला था। मई महीने में एक मरे हुए बैल की खाल उतारते हुए जुर्मू गांव के चार आदिवासी ईसाइयों पर पास के ही गांव के लोगों ने हमला कर दिया था। इस हमले में जेरेमिना के पति प्रकाश लकड़ा की मौत हो गई थी, जबकि जुर्मू के तीन ग्रामीण भी घायल हुए थे। इनमें से एक हैं जनवारिस मिंस, जो भीड़ के निशाने पर आ गए थे।
बोतल में पेशाब किया और लाके दे रहा, तो क्या करेंगे, पी रहे हैं जुन, पिए जुन, उसे बोतल में भर दिया उन लोग पेशाब करके। उसके बाद वहाँ से हम लोग को उठा के थाना ले गया, तो थाना प्रभारी बोल रहा है कि साला यही बैल काटता है, मारो। कैसा बोलने शुरू किया वो थाना प्रभारी, उसी समय लोग मारने शुरू किया। प्रकाश तो पहले ही मर गया था, उसी समय मारा था। तो थाना प्रभारी बोलता है कि झूठ बोलता है कि हॉस्पिटल में मार गया, ऐसा बोलता है।
जहां जुर्मू में सन्नाटा पसरा हुआ है, वहीं रामगढ़ में मारे गए अलीमुद्दीन अंसारी के यहां भी मातम पसरा है। अलीमुद्दीन के परिवार को आज भी इंसाफ के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उनकी पत्नी मरियम कहती हैं,
मोदी सरकार हो गया एक महीना पहले, वो अमेरिका जब गए थे तो अमेरिका में उनको फूलों के हाथ से स्वागत कर रहा था। एक तो फूल गिर गया था, तो फूल गिर गया तो बोला रे वही, मतलब वो बोले अफ ये इतना नाजुक फूल है, इसको उठा लो। तो मोदी जी को जब नाजुक फूल दिखाई दे रहा है, आज जो फूल को गिराया जा रहा है उसका, वो फूल मोदी जी को दिखाई नहीं दे रहा है। वो तो नाजुक फूल था, माने उस फूल में जान भी नहीं है, गिर गया उसमें दर्द था, उनको अफसोस था। और यहाँ इतना फूल गिराया जा रहा है, तो मेरा भी सर उतना नाजुक फूल था, तब रे जान सारे था, वो भी तो किसी की नाजुक फूल था। और सब जो घटना हो रहा, जो गिराया जा रहा है, वो भी तो नाजुक फूल था। क्या बोले, खत्म हो गए, थक गए, मतलब जाते जाते कहाँ अब जाए।
रामगढ़ की मॉब लिंचिंग की घटना में कुल 11 अभियुक्त बनाए गए, जिनको निचली अदालत ने सजा सुनाई थी, मगर कुछ अभियुक्तों को उच्च न्यायालय से बेल मिली है। अभियुक्तों के वकील संजीव अम्बष्ट अलीमुद्दीन अंसारी की हत्या को पुलिस हिरासत में हुई मौत बताते हैं।
हम लोग का जो दलील था, डिफेंस का जो दलील था, मॉब के द्वारा पीटे जाने की बात कही गई थी, तो एक्चुअली उसका स्पॉट पर डेथ हुआ नहीं था, पुलिस उसको कस्टडी में लाई। हम लोग का ये डिफेंस था कि एक्चुअली उसका डेथ जो है वो मारने से नहीं हुआ था, बल्कि वो पुलिस कस्टडी में पिटाई से उसकी डेथ हुई थी।
सामाजिक कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जो भीड़ की हिंसा का शिकार बने, पुलिस उन पर ही मामले दर्ज कर परेशान कर रही है। सिराज दत्ता ने झारखंड में हुई मॉब लिंचिंग की घटनाओं की समीक्षा की है।
प्रकाश लकड़ा के केस में देखे, चार आदिवासी, उनको गौहत्या के नाम पर पीटा गया, जिसमें एक की मृत्यु हो गई। पुलिस ने दो FIR दर्ज किया, एक तो जो परपेट्रेटर्स थे जिन्होंने मारा, चार व्यक्ति जो बचे थे उनके ही गवाही पे उन पर किया, और एक इन चारों पे ही कर दिया गौहत्या का केस, उन पे दर्ज किया। जो पीड़ित हैं ये तो और भी विक्टिमाइज हो रहे हैं मार खाने के बाद भी।
संसद के शीतकालीन सत्र में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केंद्र ने सभी राज्यों को इन घटनाओं से निपटने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि अभियुक्तों को राजनीतिक संरक्षण की वजह से मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं। सलमान रावी, BBC झारखंड।
और आइए एक नजर दिल्ली से छपने वाले आज के अखबारों की सुर्खियों पर। सिंधुवासनी के हाथ में तमाम अखबार हैं।
दिल्ली से छपने वाले अखबारों में महाराष्ट्र छाया हुआ है। हिंदुस्तान टाइम्स के पहले पन्ने पर उद्धव ठाकरे की बड़ी सी तस्वीर है और लिखा है कि सहयोगी दलों का कहना है कि उद्धव अगले 5 वर्षों के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पर उद्धव और आदित्य ठाकरे की तस्वीर है और अखबार की सवालिया हेडिंग है, विल ठाकरे ड्रॉप रिमोट टेक डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ महाराष्ट्र, यानी क्या वो इशारों से चलना बंद करके उद्धव ठाकरे सीधे कमान थामेंगे महाराष्ट्र की,
ये बड़ा सवाल है।
और टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक ही NCP ने उप मुख्यमंत्री पद के लिए अजित पवार का नाम सामने रखा है और कांग्रेस भी अपना एक उप मुख्यमंत्री चाहती है। अखबार में उन मुद्दों की भी एक लिस्ट है जो अभी सुलझने बाकी हैं, जैसे कि क्या NCP और कांग्रेस दोनों के अलग अलग डिप्टी CM बन पाएंगे, विधानसभा का स्पीकर किस पार्टी से होगा और अहम मंत्रालय किसे मिलेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने शरद पवार के बारे में लिखा है कि वो अपने पुराने रंग में वापस आ गए हैं और राजनीतिक दूरियों को पाटने का काम कर रहे हैं। प्रोफाइल छपी है शरद पवार की। उद्धव ठाकरे के बारे में भी उनके एक सहयोगी के हवाले से अखबार ने लिखा है कि उनमें बाल ठाकरे वाला करिश्मा तो नहीं है, लेकिन वो सियासी हालात बहुत सही तरीके से भांप लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन है महागठबंधन मूव्स क्लोजर, और एक्सप्रेस में इसी विषय पर उन्नी का बनाया एक कार्टून है कार्टून में बाल ठाकरे और जवाहरलाल नेहरू दोनों सिगार पीते दिख रहे हैं और लिखा है कि कांग्रेस की रिसर्च टीम ने एक ऐसा लिंक ढूंढ लिया है दोनों पार्टियों में जिनसे कोई इनकार नहीं कर सकता। जनसत्ता लिखता है कि आज शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों पार्टियों के नेता औपचारिक ऐलान करेंगे उद्धव के मुख्यमंत्री बनने का। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी एक और खबर है कि राज्य के ही एक निवासी ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की है और कहा है कि शिवसेना ने जिन पार्टियों के खिलाफ चुनाव लड़ा अब वो उन्हीं के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रही है जो संवैधानिक मूल्यों और जनादेश के साथ धोखा है।
सिंधु, महाराष्ट्र से आगे बढ़ते हैं।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट का जिक्र करूंगी। रिपोर्ट कहती है कि व्हाट्सएप ने भारत सरकार को बताया है कि इसराइली कंपनी एनएसओ के स्पाईवेयर पेगासस के जरिए भारत में 121 लोगों के फ़ोन को निशाना बनाया गया था और इसमें 20 लोगों की प्राइवेसी से समझौता हुआ है। सितंबर में खबर भी आई थी कि स्पाईवेयर के जरिए दुनिया भर में लगभग 1400 लोगों की जासूसी हुई है। और जनसत्ता की खबर है कि भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत को अयोध्या मामले में बड़ी कूटनीतिक कामयाबी मिली है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा है कि भारत ने अयोध्या मामले पर अपने फैसले को दूसरे देशों से संतोषजनक ढंग से समझाया है दूसरे देशों को। उन्होंने कहा कि जिससे भी हमारी इस मसले पर बात हुई हमने कहा कि ये भारत का आंतरिक मामला है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और कल कोलकाता में भारत का पहला डे नाइट टेस्ट मैच हुआ जो पिंक बॉल से खेला गया, तो ये खबर भी अखबारों में है। अमर उजाला ने लिखा है कि गुलाबी गेंद के आगे बांग्लादेशी बेरंग। दैनिक भास्कर ने लिखा है डे नाइट टेस्ट मैच में गुलाबी क्रांति, टेस्ट में T20 जैसा रोमांच, गुलाबी गेंद के आगे 2.5 घंटे में बिखरा बांग्लादेश। भारत ने इस मैच में बांग्लादेश को 106 रनों पर ऑल आउट कर दिया था और अब 68 रनों की बढ़त बना ली है। विराट कोहली के रिकॉर्ड के बारे में भी खबरें हैं अखबारों में।
शुक्रिया सिंधु। हाल ही में मशहूर पर्वतारोही मनमोहन सिंह कोहली की आत्मकथा अ लाइफ फुल ऑफ एडवेंचर प्रकाशित हुई है जिसमें उन्होंने अपने रोमांचक सफर की कई बातों को साझा किया है। मनमोहन सिंह कोहली उस भारतीय दल के प्रमुख थे जिसके 9 सदस्यों ने साल 1965 में एवरेस्ट की ऊंचाइयों को छूकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। आज की विवेचना में रेहान फजल याद कर रहे हैं भारतीय पर्वतारोहियों की उसी उपलब्धि को।
तू है जहां है आसमां, मैं हूं इस जमीन पे, हमको पर मिलना तो है कितनी भी हो दूरियां, कितनी भी हो मजबूरियां, वो हो के रहेगा।
29,029 फीट की ऊंचाई को आप आसमान नहीं तो और क्या कहेंगे। दुर्गम चढ़ाई, गहरे ढलान, ऑक्सीजन की कमी, 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती बर्फीली हवा और शून्य से भी 40 डिग्री नीचे के तापमान के बावजूद हर पर्वतारोही का सपना होता है कि वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर पहुंचकर नीचे की दुनिया को निहारे। वैसे तो पर्वतारोही एवरेस्ट को तकनीकी रूप से सबसे मुश्किल चढ़ाई नहीं मानते, लेकिन इसका सबसे ऊंचा होना ही इसे सबसे खास बनाता है। यूं तो 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोरके ने सबसे पहले एवरेस्ट को फतेह किया था, लेकिन 1965 में पहली बार किसी भारतीय दल ने न सिर्फ एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता पाई बल्कि एक दल के 9 सदस्यों द्वारा एवरेस्ट पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। कैप्टन MS कोहली इस 21 सदस्यीय भारतीय दल के नेता थे।
हम जब भी समझते हैं जितनी चोटियां हैं पहाड़ों की, हिमालय की, हम उनको मंदिर की तरह मानते हैं। हम अपने अपने मजहब के हिसाब से सब लोग ऊपर जाके करते हैं प्रेयर। तो आपने देखा होगा कि हमारी किसी भी किताब में, मैंने 27 किताबें लिखी हैं, किसी किताब में भी कांकस का वर्ड यूज़ नहीं किया। हम लोग होमेज देते हैं, ऊपर जाके भगवान की मथा टेकते हैं।
20 मई 1965 को AS चीमा और नवांग गोम्बू सुबह 3 बजे उठे उन्होंने गर्मा गर्म कॉफी पी, अपने आप को अंतिम चढ़ाई के लिए तैयार किया और 5 बजे धीमे लेकिन दृढ़ कदमों से एवरेस्ट की ओर बढ़ निकले। एडवांस बेस कैंप और बेस कैंप पर तेजी से धड़कते दिलों के साथ सभी लोगों ने अपनी दूरबीनें दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर तान रखी थी
कि ये कोई 5:30 बजे सुबह निकले थे और दिन को 9:30 बजे सुबह समिट के ऊपर पहुंच गए। इतना जल्दी समिट पे कोई भी नहीं पहुंचा था। पहाड़ चढ़ना मुश्किल तो है लेकिन वापस आना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। अब जो आदमी समिट के ऊपर पहुंचता है वो खुश होता है सिर्फ 1 मिनट के लिए, उसके बाद उसको फिक्र लग जाता है कि अरे मैं जिंदा बेस कैंप वापस भी पहुंचूंगा कि नहीं।
मैंने कैप्टन कोहली से पूछा, आप तो नीचे थे, आपको कब और कैसे पता चला कि चीमा और गोम्बू एवरेस्ट पर जा पहुंचे हैं?
सबसे पहले तो गुरदयाल सिंह ने कहा कि वो लोगों ने चढ़ना शुरू कर दिया है, कोई 8:30 बजे मैंने देखा है अच्छी स्पीड पे ऊपर जा रहे हैं, काफी उम्मीद है हो जाएगा काम। तो जब वो 10-20-25 फुट नीचे रह गए समट के, तो कर्नल कुमार ने वॉकी टॉपी पे शाउट किया कि कोहली कांग्रेचुलेशंस दे आर ऑलमोस्ट ऑन द समट नाउ। 10 बजे आके कोई 12:30 के करीब वो लास्ट कैंप में पहुंचे, तो फिर मुझसे चीमा और गोपू दोनों ने बात की। उन्होंने कहा कि बड़ा साहब हमने कर लिया है, तो मैंने फिर फटोफट मैसेज इंडिया भेजा, तो शाम की रेडियो न्यूज में भी आ गया 20 को और अगले दिन पेपरों में बैनर हेडलाइन में आ गया।
इसके बाद 2-2 दिनों के अंतर पर सोनम ग्यात्सो, सोनम वांग्याल, सीपी वोहरा और अंग कामी समिट पर पहुंचे। 25 मई की सुबह जब मेजर अहलुवालिया जगे तो फू दोरजी उनके लिए चाय लेकर आए। उन्होंने कहा कि कल रात कैंप 3 पर जबरदस्त एवलांच आया जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। चाय छोड़कर अहलुवालिया बाहर भागे, वहां उन्होंने जो दृश्य देखा तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई।
हमारी जो समिट पार्टी थी उसको क्लाइम करना था 29 मई को, तो उससे पहले हम असेंबल होते हैं एडवांस बेस कैंप कैंप 1, तो हमारा जो सामान था पर्टिकुलरली ऑक्सीजन सिलेंडर वो हमने कैंप 3 में हमारे से जो आगे था वहां स्टॉक कर दिया था सारा। तो हमारे जाने से 1 दिन पहले सवेरे हमने बड़ा जोर का धमाका सुना, तो हमने कहा ये तो एवलांच है। तो हमारा जो कुक है वो आया 6 बजे थे सवेरे, कहता जी वो देखो सामने आपका कैंप तो बिल्कुल कवर हो गया बर्फ से, और जो लीडर थे कोहली साहब वो कहते हैं कि बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये आप लोग नहीं जा सक पाओगे बिकॉज आपकी जो ऑक्सीजन है सारी दब गई है उधर। तो उन्होंने कहा कि फिर ये एक्सपीडिशन हम क्लोज करते हैं। मैंने उनको समझाया बताया हम सिर्फ 6 लोग चढ़े अभी तक, पर अगर हम 1 या 2 और आदमी ऊपर भेज देते हैं तो हम वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बन जाएंगे। मैंने कहा मुझे आप 5-6 रुपया दीजिए, मैं जाता हूँ देखता हूँ, नहीं होगा तो मैं आ जाऊंगा वापसी। तो हम उधर गए, हमने देखा वो तो बिल्कुल सारा सफेद था, तो हमें समझ नहीं आई कि कहाँ से शुरू करें। तो फिर हमने कहा कि चलो 5 डायरेक्शन से हम थोड़ा थोड़ा खोदना शुरू करते हैं आइसक के साथ। 1 घंटा 1.5 घंटा खोदा, कुछ नहीं मिला। फिर सब शर्पा और हम निराश होकर हमने कहा भगवान को जरा प्रार्थना करते हैं, फिर हमने डिगिंग शुरू कर दी। फिर एक मेरा आइसक जो था वो जोर से क्लिक की आवाज आई टिंग करके, तो वो था सिलेंडर के साथ लगा और वो फिर 1 सिलेंडर निकला, 2-3 सारे सिलेंडर वो फिर हमें मिल गए। और जब मैं आया तो कैप्टन कोहली खुश होकर कहते हाँ आप ट्राई करो।
29 मई को अहलुवालिया, फूदोरजी, बहुगुणा और रावत ने 2-2 के ग्रुप में एवरेस्ट की ओर बढ़ना शुरू किया। थोड़ी दूर गए होंगे कि बहुगुणा ने कहा कि वो और आगे नहीं जा सकते।
हम 2 पार्टी थी, मैं था और फूदोरजी 1 में, हम आगे और हमारे साथ पीछे बहुगुणा और रावत। सवेरे सवेरे हम 4 बजे के करीब उठ गए थे और 4 बजे उठ के तैयार थी और वो जूते क्रैम्पन डाले, ज्यादा चीज तो डाल के ही सोते हैं। सोचा पानी गर्म करें पर नहीं, वो पानी भी गर्म नहीं हो पाया। 5:30 बजे के करीब हम बाहर आके चलना, तो मेरे जो पांव थे वो बड़े ठंडे हो रहे थे, पता भी लग रहा है कि नहीं। फिर उसने कहा कि नहीं जमीन में बर्फ में जोर जोर से किक करो, किक कर करके थोड़ी देर में गर्म हो गए। जैसे ही चल लगे दूर से हमने देखा कोई आ रहा था, फूरदौर जी कहता है ओ यटी आ रहा है यटी। तो थोड़ी देर तक रुके तो देखा रावत अकेला चला आ रहा है। वो हमने कहा तेरे को क्या हो गया, कहता है वो भोगना थोड़े उनको खारिश हो रही है बीमार है, वो कहते नहीं आएंगे तो वो वहीं पे है। मैं फिर मैंने कहा अकेला चलता हूँ, तो मैंने कहा तेरे को डर नहीं लगता अकेला तो कैसे स्लिप कर जाए, कहते नहीं नहीं मैं सोचा था कि आप लोगों को मिल लूंगा। फिर उसको हमने अपनी रोप में डाला और आगे चले और फिर चलते चलते बाकी हिस्ट्री है।
तीनों ने हाथ में हाथ डाले एक साथ एवरेस्ट पर कदम रखा। वहां पर पहले आए दल द्वारा लगाया गया तिरंगा झंडा फहरा रहा था लेकिन हवा के जोर से तार तार हो चुका था।
तो सबसे पहले हमने भगवान का शुक्रवाद किया। हमें कहा गया था कि आपके टाइम में वेदर खराब होगी, मेट की रिपोर्ट थी, बहुत तेज हवा चल रही थी। एवरेस्ट क्लाइंब करने से आपको प्रूफ लेना पड़ता है, फोटोग्राफी। तो मैं क्योंकि ऑफिशियल फोटोग्राफर था, मेरे को काफी फोटो लेनी पड़ी। फूदौर जी कहता है मैं आपके लिए एक तोहफा है आपके लिए। मैंने कहा क्या है तोहफा यार? तो उसने कहा कि जी आप खड़े हो जल्दी। उसने एक थर्मस निकाली छोटी, उसमें गर्म कॉफी, और फिर हमने वो गर्म कॉफी का आनंद ही कुछ और था। और समिट के ऊपर जब हम थोड़ा स्क्रैच कर रहे थे, किसी ने चॉकलेट रख दी हुई थी, तो फिर हमने वो चॉकलेट निकाल के वो चॉकलेट खाई और ये कॉफी पी। यही 29th को हमने यही खाया था बस। मैंने फिर अपनी रिस्ट वॉच रख दी, फिर मैंने रोजरी रखी अपनी, गुरु नानक की फोटोग्राफ रखी। क्या है कि एवरेस्ट टाइम आता है नीचे उतरने के लिए, ऑल दो मतलब यू फील प्राउड, वो प्राइड आप में आती है कि आप कुछ कर पाए, पर एक वो सैडनेस होती है, टिंज ऑफ सैडनेस, वो एक आने लगी कि अब तो देयर इज नथिंग हाई टू क्लाइंब एंड एवरी रोड विल लीड डाउन।
कोहली और नरेंद्र कुमार शिखर पर खुद नहीं गए क्योंकि ये दोनों दल का नेतृत्व कर रहे थे।
मैं इनके साथ तो नहीं था पार्टीज के साथ, लेकिन मेरा ध्यान सब उधर ही था और जितने ये लोग चढ़ रहे थे मैं भी स्टेप बाय स्टेप इनके साथ अपना चढ़ रहा था। जितने ये थक रहे थे मैं भी इतने ही थक रहा था। जब समिट के ऊपर पहली पार्टी पहुंची बहुत खुश हुआ, सेकंड पहुंची तो मैं नाचने लगा, तीसरी पहुंची तो फिर तो नाचने का भी, अब मैंने कहा क्या बहुत ही खुशी, और चौथी का तो मुझे याद ही नहीं है, बिल्कुल जैसे मैं पागल ही हो गया।
जब ये दल भारत पहुंचा तो पालम हवाई अड्डे का दृश्य देखते ही बनता था। कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ वहां पहुंचे हुए थे। राष्ट्रीय हीरोज की तरह उनका इस्तकबाल हुआ।
तू है जहां है आसमां, मैं हूं इस जमी पे यहां, हमको पर मिलना तो है कितनी भी हो दूरी।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
कितनी भी हो मजबूरियां।
बीबीसी इंडिया बोल।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय आखिर बार बार निशाने पर क्यों? देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी क्या विपरीत विचारधाराओं की रस्साकशी का अड्डा बन गई है? इस बार इंडिया बोल में चर्चा इसी विषय पर होगी। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 23 नवंबर शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 या 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
और चलते चलते मुख्य समाचार पुनः सिंधुवासिनी से।
बीबीसी समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में उन पर यूक्रेन मामले में महाभियोग चलाने के समर्थन में वोट किया गया तो वो चाहेंगे कि सीनेट में बाकायदा मुकदमा भी चले। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सीरिया में अनाथ हुए ब्रितानी बच्चों के स्वदेश लौटने का स्वागत किया है। ब्रितानी मूल के कुछ बच्चों को सीरिया में इस्लामिक स्टेट के कब्जे वाले इलाकों से वापस ब्रिटेन ले आया गया है। ईरान में न्यायपालिका के एक प्रवक्ता का कहना है कि हाल ही में ईंधन की कीमतों में हुई वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन आयोजित करने वाले 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रवक्ता ने कहा कि ईरानी सेना ने देश के अलग अलग हिस्सों से प्रदर्शनों की अगुवाई करने वाले लोगों की पहचान की है और उन्हें गिरफ्तार किया है। केरल के एक क्लासरूम में 10 साल की एक बच्ची की सांप के डसने से मौत हो गई है, जिसके बाद वहां लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे रविशंकर कुमार। अगला प्रसारण भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे आज होगा। बीबीसी इंडिया बोल रहेगा आपके फोन कॉल्स का इंतजार। संदीप सोनी के साथ दीजिए इजाजत।